31 दिसंबर दिन रविवार, दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को आदर्श राठौर का नमस्कार। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत ने किया राजनीति में आने का ऐलान, प्रशंसकों में उत्साह। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले में 4 जवानों और 2 चरमपंथियों की मौत।
सुनाई अटैक हुआ है सीआरपीएफ कैंपस लेटपुरा में, उसमें जैसे अंदर आए घुसे तो हमारी जो फोर्सेस थे इन्होंने उनका मुकाबला किया।
दिखाएंगे उस शख्स की अलग सी तस्वीर जिसे आप साल के 365 दिन देखते रहे हैं, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने आज अपने प्रशंसकों के सामने राजनीति में आने की घोषणा की। रजनीकांत ने कहा कि वो तमिलनाडु में होने वाला अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की भी घोषणा की है। ईरानी प्रशासन ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान में हो रहे सरकारी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान डोरूट शहर में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि शनिवार को 2 लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। हालांकि उन्होंने इस बात को खारिज किया है कि ये मौतें पुलिस की गोलियों से हुई हैं। वहीं ईरान में तीसरी रात भी प्रदर्शन जारी रहे और तेहरान की सरकारी इमारतों समेत दूसरी जगहों पर हमला किया गया। देश के आंतरिक मंत्री अब्दुल रजा रहमानी फजली ने कहा है इंटरनेट के जरिए हिंसा भड़काने वालों की पहचान कर ली गई है और उन्हें सजा दी जाएगी।
کسانی که از خیشتنداری متانت تدبیر و مدارای
جو پولیس کے आत्मसंयम और धैर्य का दुरुपयोग करते हैं वह उपद्रव के लिए जिम्मेदार होंगे। उपद्रव और अराजकता से कुछ भी हल नहीं किया जा सकता है। हमें यह मालूम है कि इस स्थिति को किसने पैदा किया है और साइबर स्पेस में हिंसा को कौन बढ़ावा दे रहा है। ये थे ईरान के आंतरिक मंत्री अब्दुल रजा रहमानी फजली के शब्द। पूर्वी अफगानिस्तान में अंतिम संस्कार के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जिसके बाद कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार मरने वालों की संख्या अधिक हो सकती है। जलालाबाद शहर में हुए इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है। 3 दिन पहले राजधानी काबुल में एक शिया सांस्कृतिक केंद्र पर हुए आत्मघाती हमले में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। विश्व में गधों की संख्या कम होने के बावजूद चीन ने गधों की खाल पर लगने वाले आयात कर को कम कर दिया है। इस खाल का इस्तेमाल पारंपरिक औषधि में किया जाता था। कल से इसका कर 5% से कम होकर 2% रह जाएगा, जिसके बाद खाल का आयात करना और सस्ता हो जाएगा। हाल के सालों में विदेशी खालों की मांग बढ़ी है, जिसके बाद आंदोलनकारियों का कहना है कि अफ्रीका जैसी जगहों पर गधों की संख्या में कमी आएगी, जहाँ इनका इस्तेमाल परिवहन में अधिक होता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि विश्व में संघर्ष गहराते जा रहे हैं और पिछले 12 महीनों में नए खतरे पैदा हुए हैं। नए साल के संदेश में उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद और विदेशी लोगों की नापसंदगी में वृद्धि हुई है और शीत युद्ध के बाद परमाणु युद्ध को लेकर चिंताओं में काफी बढ़ोतरी हुई है।
When I took office 1 year ago, I appealed for 2017 to be a year for peace.
जब मैंने 1 साल पहले अपना कार्यभार संभाला था, तब मैंने 2017 के लिए अपील की थी कि यह शांति का साल होगा। दुर्भाग्यवश मौलिक तरीके से दुनिया उल्टी हो गई है। मैं अपील जारी नहीं कर रहा हूं, मैं एक चेतावनी जारी कर रहा हूं। हम दुनिया के लिए एक रेड अलर्ट, हमारी दुनिया के लिए एक रेड अलर्ट। ये थे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। नाइट क्लब पर हुए हमले की पहली बरसी से पहले तथाकथित इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने के आरोप में तुर्की में पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से 15 लोग विदेशी हैं। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि ये लोग नए साल की पूर्व संध्या के जश्न पर हमला करने की योजना बना रहे थे। 1,000 से अधिक संदिग्ध लोगों को अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल हुए हमले में 39 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति जोसेफ कबीला के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की एक रैली को बल प्रयोग कर रोक लिया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में आने का ऐलान किया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 234 सीटों पर लड़ेगी। सुनिए इस ऐलान के बाद उनके प्रशंसकों का क्या कहना था।
नमस्ते, मेरा नाम कुमार राजा है, मैं चेन्नई से हूँ। आज बहुत खुश का दिन है, मेरे तालेवर ने पॉलिटिक्स पे एंटर किया है। 20 साल का इंतजार था हमें, आज तो बोल दिया मेरे तालेवर ने कि आ रहा है, तमिलनाडु को रॉक करेंगे, कि आज इसे बन गया हमारा न्यू ईयर का पार्टी। ऑल द फैंस आर मेकिंग यू नो दे आर सेलिब्रेटिंग लाइक हेल।
देन में रजनीकांत आएगा, ज़्यादा पब्लिक आएगा, बहुत आदमी खुश है और इसी तरह देखने को मिलेगा, अमिताभ बच्चन की तरह है और ज़्यादा पब्लिक खुश हुआ है।
खास बात यह है कि रजनीकांत आने वाले निकाय चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे। उनके राजनीति में आने के फैसले का कई पार्टियों और सितारों ने स्वागत किया है, मगर सवाल यह है कि क्या रजनीकांत तमिलनाडु की 50 साल पुरानी द्रविड़ राजनीति में कामयाब हो पाएंगे। इसी पर सुनिए बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
ये थे रजनीकांत के शब्द और उनके फैंस की जबरदस्त प्रतिक्रिया। फैंस का इस उत्सव को वोटों में कैसे बदलना है, ये रजनीकांत के भाषण में दिखा दिया। रजनीकांत ने कहा कि अब राजनीतिक बदलाव लाने का समय आ गया है, क्योंकि राजनेताओं ने जनता को धोखा दिया है। तो सवाल उठा है कि राजनीति में आने से क्या रजनीकांत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जगह ले सकते हैं। हमने ये सवाल वरिष्ठ विश्लेषक बीआरपी भास्कर से पूछा। उन्होंने कहा, रजनीकांत को एक ही वजह से जयललिता का विकल्प माना जा रहा है कि वो दोनों फिल्म जगत से राजनीति में आए हैं, मगर जयललिता द्रविडियन राजनीति से आई थी। आज परिस्थिति ऐसी है कि द्रविडियन राजनीति अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और इस वजह से फिल्मी हस्तियां राजनीति में आने लगे हैं, जैसे कमल हासन ने भी कहा है। अभी ये कहना मुश्किल है कि रजनीकांत जयललिता की जगह ले लेंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि द्रविडियन राजनीति बहुत कमजोर होती जा रही है। ये थे बीआरपी भास्कर के शब्द। जयललिता के निधन के बाद अन्ना डीएमके में फूट पड़ गई और एक साल के बाद भी उसमें किसी तरह की मजबूती नहीं दिख रही है। उसके साथ डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि की सेहत भी अस्वस्थ हो गई है। इस बीच राजनीकांत ने अपने भाषण में आध्यात्मिक राजनीति का जिक्र किया, जिससे तमिलनाडु की बीजेपी खुश हो गई। लेकिन इस पर राजनीतिक विश्लेषक के एन अरुण कहते हैं, रजनीकांत आध्यात्मिक पुरुष हैं, लेकिन हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि तमिलनाडु द्रविडियन संस्कृति में डूबा लगता है, पर राज्य में आध्यात्मिकता की लकीर कायम है, फिर भी बीजेपी उसका उपयोग नहीं कर पाई है। शायद रजनीकांत उसका फायदा उठा सकते हैं। ये थे के एन अरुण के शब्द। तो आज के राजनीतिक परिस्थिति में रजनीकांत का क्या असर पड़ सकता है? हमने यह सवाल वरिष्ठ विश्लेषक मालन से पूछा। उन्होंने कहा,
सो आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट अ काइंड ऑफ अ माइग्रेशन फ्रॉम ऑल अदर।
एक बात तो स्पष्ट है कि जो वोट बीजेपी, कांग्रेस और विजयकांत की डीएमडीके जैसे पक्षों को जा रहा है, वो रजनीकांत उपयोग कर सकते हैं। ये भी उम्मीद रख सकते हैं कि अन्ना डीएमके जैसे पक्ष से भी विस्थापित हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं रखना चाहिए कि रजनीकांत द्रविडियन पार्टियों के लिए चुनौती बन सकते हैं। ये थे मालन के शब्द। तमिलनाडु के राजनीतिक हलाकों में ये आशंका है कि विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं। मतलब ये कि रजनीकांत के पास 1.25 साल का समय है अपनी पार्टी को बनाने के लिए। ऐसे में वो बॉक्स ऑफिस की तरह वोटिंग मशीन में भी हिट होंगे या नहीं, देखने के लिए अभी वक्त है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार तड़के सीआरपीएफ के कैंप पर चरमपंथियों ने हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 4 जवानों की मौत हो गई और जवाबी कार्रवाई में 2 चरमपंथी मारे गए हैं। इस घटना पर सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की विस्तृत रिपोर्ट।
रविवार की सुबह तड़के श्रीनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर जिला पुलवामा के लथपोरा इलाके में कायम सीआरपीएफ के एक ट्रेनिंग सेंटर पर हथियारों से लैस फिदायीन चरमपंथियों ने कैंप में दाखिल होने से पहले गेट के बाहर कैंप पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग की। इब्तदाई फायरिंग में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए थे, जिनमें से एक जवान की अस्पताल में मौत हो गई। 13 घंटों तक चलने वाली इस मुठभेड़ में मजीद 2 सीआरपीएफ जवानों की कैंप के अंदर गोली लग गई, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जवान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई है, जबकि 2 जवान घायल हैं। सीआरपीएफ की जवाबी कार्रवाई में 2 चरमपंथी अभी तक मारे गए हैं। सीआरपीएफ के आईजी रविदीप शाही ने बीबीसी को बताया,
ये सुबह 2 बजे के आसपास फायरिंग अटैक हुआ है सीआरपीएफ कैंपस लेटपुरा में। उसमें जैसे अंदर आए घुसे तो हमारे जो फोर्सेस थे इन्होंने उनका मुकाबला किया, 3 जवान है वो शहीद हुए हैं। उसमें हमने 2 आतंकवादियों को मिलिटेंटों को मार गिराया।
आईजी शाही का यह भी कहना था कि उनके पास इस तरह का इनपुट पहले से ही आया था कि चरमपंथी फिदायीन हमले को अंजाम दे सकते हैं।
जी, हमारे पास इनपुट थे कि फिदायीन होने की चांसेस हैं।
कैंप के अंदर की इमारत में 3 ब्लॉक बने हुए हैं, जिसमें से एक ब्लॉक को चरमपंथियों ने अपने कब्जे में ले रखा था, जहां से वो सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग कर रहे थे। कई घंटों की दोतरफा फायरिंग के बाद चरमपंथियों को मारने का ऑपरेशन शुरू किया गया। इस हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन जैश मोहम्मद ने कबूल की है। यह हमला जैश मोहम्मद के कमांडर नूर मोहम्मद तांत्रे को मारे जाने के सिर्फ 2 दिन बाद अंजाम दिया गया है। पुलिस का कहना है कि नूर मोहम्मद के मारे जाने से जैश मोहम्मद को बहुत बड़ा दचका लग गया है। इस साल यानी वर्ष 2017 में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में 206 चरमपंथी मारे जा चुके हैं, जिनमें चरमपंथियों के कई टॉप कमांडर भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा चरमपंथी दक्षिणी कश्मीर में मारे जा चुके हैं। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
कौन है वो शख्स जिसे आप रोजाना साल के 365 दिन देखते हैं? आपके पति, पत्नी, पिता, माता या बच्चे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता कि साल भर आप इन लोगों को हर रोज देखें, पर एक आदमी है जो रोजाना आपसे मुखातिब होता है, कभी टीवी के पर्दे से, कभी अखबारों के इश्तिहारों में, कभी रेडियो पर मन की बात सुनाते हुए, या फिर सोशल मीडिया के जरिए। आप सही समझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं वो शख्स जिनकी तस्वीर आप हर दिन देखते हैं। यूं तो ये तस्वीर बहुत गंभीर होती है, मगर अब पूरा साल खत्म होने को आया है, तो गंभीरता को कीजिए किनारे और देखिए नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर जिसे हमारे साथी राजेश जोशी ने ना जाने क्या खाकर उकेरा है।
इतिहास गवाह है, बालक नरेंद्र को बचपन से ही पशुओं से अगाध प्रेम था। कहानी आपने भी सुनी होगी कि बचपन में वो एक बार मगरमच्छ को अपने घर ले आए थे।
अंडे में से बाद उसके बच्चे निकलते थे, उस टाइम वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो मोदी साहब को लेके आए थे। ये हकीकत है, बहुत से लोग आते थे, मोदी साहब भी आए और कैसे बहुत से लड़के यहाँ इकट्ठे होते थे, वो अंडे से अंडे उसको फोड़ के अंडे में से बच्चे निकालते थे और लेके तब बाजार में फिरते थे।
अब मगरमच्छ लाए हो या उसके अंडे फोड़े हो, बात तो एक ही है। मोटी सी बात ये है कि मोदी को बचपन से ही पशु प्रेम था और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये प्रेम और प्रगाढ़ हो गया। मोदी के पशु प्रेम का सबूत चाहिए तो ये रहा सबूत।
इतनी सवेरे सवेरे मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि चारों तरफ करीब करीब 1700 पशु धूप में खड़े हैं, उनको कष्ट हो रहा है। उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये ताप में आप जो तप रहे हैं, ये आपकी तपस्या हम कभी बेकार नहीं जाने दें।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी को हर बात साफ साफ कहने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने मन की बात कभी नहीं छिपाई, छिपाने की कोशिश भी की तो असली बात जबान पर आ ही गई।
हम उसी काम को करना पसंद करते हैं जिसमें वोट की संभावना होती है। अपनी वोट बैंक मजबूत बनाने के लिए
हम अपना काम किया करते हैं।
अब अपने मन की बात इससे साफ और क्या कही जा सकती है। स्पष्टवादिता में नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। उनके सामने कोई भी हो, वो वही कहते हैं जो उन्हें कहना होता है, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी भला माने या बुरा।
आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूँ वो शब्द उपयोग न करें।
माने मानेंगे नहीं, मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिए गए हैं फिर भी मानेंगे नहीं, बार बार उसी शब्द का प्रयोग करेंगे। कह दिया ना कि उस शब्द का प्रयोग नहीं करना है, खत्म बात। लेकिन नहीं, बार बार तुलना करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी इतने बड़े तो उतने बड़े, तो अब ऐसा तो तब वैसा।
हमारे नेताओं में से वाजपेयी बहुत बड़े नेता थे, बहुत सफल नेता रहे, लेकिन मुझे याद नहीं कभी किसी ने इस प्रकार की भाषा बोली हो।
लेकिन फिर किसी ने याद दिला दिया कि आडवाणी जी ऐसी बातें नहीं कहनी है अब, समझते क्यों नहीं आप। आडवाणी तुरंत संजीदा हुए और बोले,
नरेंद्र भाई भी जब भी मुझे मिले हैं, इन दिनों में भी मिले हैं, तो सदैव हमने चर्चा की है खुल करके और अच्छी बातें हुई है।
लेकिन इतने पुराने जख्म इतनी जल्दी भरते कहाँ हैं। फिर कुछ दिन बाद किसी ने पूछ ही लिया, आडवाणी जी देखिए ना, अटल जी कितने अच्छे तरीके से सरकार चलाते थे, क्या यही बात आप नरेंद्र भाई मोदी के बारे में भी पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये सरकार अब तक की सबसे अच्छी सरकार है?
That I cannot say, I would always say, I cannot say.
तो विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया ने सीधे सीधे आडवाणी जी से पूछ ही लिया।
मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हरा हुआ, भारतीय जनता पार्टी को हरा हुआ, भारतीय जनता पार्टी को हरा हुआ।
मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा।
जादू की छड़ी होती है और जादू की छड़ी का इस्तेमाल करके आवश्यक कदम उठाकर आप देश की परिस्थिति को बदल सकते हैं, और आप नहीं बदल सकते हैं तो आपको राजनीति में आने का कोई अधिकार नहीं, फिर घर जाइए।
यशवंत सिन्हा भी इनसे मिल गए हैं। नरेंद्र भाई अगर इसी तरह सुर में सुर मिलते रहे तो ये सब असुर हावी हो जाएंगे। कुछ कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए, कुछ तो कीजिए।
मैं जानता हूँ मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है, मैं जानता हूँ कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मैं जानता हूँ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे।
संकट की इस घड़ी में इंसान को याद आती है ममता की मूरत, यानी
हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना।
मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बत्तियाँ, तेरी दो बत्तियाँ युग में मिलता।
अब बेचारे मोदी जी करें भी तो क्या करें, कई बार कह दिया, रास्ते से अलग कर दिया, डांट कर चुप रहने को कह दिया,
फिर भी ये मिले सुर मेरा तुम्हारा ब्रिगेड कहां मानने वाली है? पर मोदी जी को समझाइए तो ये सुनने को भी तैयार रहिए।
मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं नहीं बताइए क्या कर लेंगे?
अब कोई आदमी जब कर लो क्या करते हो के मूड में आ ही गया है तो वाकई उसका कौन क्या कर लेगा। फिर भी दुश्मनों को छकाने के लिए कुछ तो करना ही था मोदी जी को, तो फिर आई वो ऐतिहासिक रात।
आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी।
रणभेरियां बज उठी, संसद हिल उठी।
देश में कोई एक व्यक्ति भी नहीं है जो कि हमारी सरकार के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए इस फैसले उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री भी आए, तो प्रधानमंत्री जी आएंगे और यहाँ आवश्यक हुआ पूरे महज में प्रधानमंत्री जी भी इंटरवेंशन करेंगे।
और प्रधानमंत्री ने इंटरवेंशन किया, पर कैसे?
देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है।
इस व्यवस्था को करने के लिए बेचारे प्रधानमंत्री को कैसे कैसे बुरे लोगों के सोहबत में रहना पड़ा और क्या क्या नहीं सीखना पड़ा। पर जब उन्होंने तरीका सीख लिया तो बताया भी कि लोगों की जेबें हल्की करने की कला क्या होती है और कैसे इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ध्यान से सुनिए।
जेब कतरे आ जाते हैं लेकिन वो बड़े चालाक होते हैं जी। वो जेब कतरा जेब काटेगा तो उसका जो साथी दूर खड़ा है उसको पता चलता है आप काम हो गया तो उधर की तरफ दौड़ता है, ये चोर चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, है? तो पुलिस पुलिस सब वहां भागेगी और वो जेब कतरा आराम से उधर से निकल जाएगा।
जेब कतरा आराम से उधर से निकल जाएगा और पता चला किसी मुशायरे में घुसकर वाह वाह ही लूट रहा होगा।
इस मोड़ पर घबरा के ना थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप।
ऐसे फंसाया जाता है शिकार, हम चलते हैं आगे आगे, आइए आप। और जब शिकार फंस जाता है तो देखिए कैसे फड़फड़ाता है, कैसे गुहार करता है।
भाई बहनों मेरी मदद करें, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें, मेरी
भाई, भाई। अरे भाई साहब जरा गाड़ी रोको भाई, भाई साहब गाड़ी रोको।
भगवान।
पर साहब जब किसी की गुड्डी फंसी हो तो मदद के लिए कोई नहीं आता और आखिर उसे कहना पड़ता है,
अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों ये फकीरी है जिसने मुझे
दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, इंटरनेशनल फकीर आए हैं।
अरे कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा, लेकिन दे दे इंटरनेशनल फकीर को।
दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे।
लोग लोहा मानते हैं नरेंद्र मोदी का कि दुनिया भर के अखबार इस आदमी की कितनी भी आलोचना करते रहें पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर इसका रहस्य क्या है?
अखबार में पढ़ता नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना जीवन जीने की जड़ी बूटी क्या, मेरी ये जड़ी बूटी है। और इसी कारण मस्ती से रहता हूँ, किसी को कुछ जवाब भी देने की फिर जरूरत नहीं पड़ती।
अब कोई आदमी अखबार ही ना पढ़े तो उसके बला से आप कुछ भी छापते रहिए, पर कोई तो रहस्य होगा। नरेंद्र भाई अखबार क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ते नहीं या पढ़ नहीं सकते?
मैं स्वयं पढ़ नहीं पाता, ये मुझे बहुत कमी महसूस होती है, बहुत दिन हो गए पढ़ ही नहीं पाया।
ओहो, तो ये मामला है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। पर ये रहस्य गहरा है कि अखबार न पढ़ने की प्रेरणा नरेंद्र मोदी कहां से लेते हैं। अभी अभी पता चला है कि असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर की एक फिल्म देखने के बाद अखबार न पढ़ने की कसम खा ली थी।
वाह वाह वाह, वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे, अब तो धंधा बन गया अखबार। पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हंसते हैं।
तो क्या बेटा लड़का बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है? मौसी की तर्ज पर किसी पत्रकार ने पूछ ही लिया।
मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके।
क्यों भाई आश्चर्य क्या होना है, आपको जानते नहीं क्या हम?
मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया और अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया।
हा हा हा, यही सिखाएंगे स्कूल के बच्चों को, क्यों स्कूली शिक्षा नहीं हुई तो आगे बढ़ गया? फिर क्यों कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? पढ़ेगी तो आगे कैसे बढ़ेगी बिटिया? अरे एक बार कह दिया कि पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, बस चुप रहो यार अब। लेकिन पत्रकार हैं कि मौका पाते ही बार बार घाव हरा कर देते हैं।
पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। कितना पढ़े हैं आप?
फिर वही सवाल। अरे कह दिया ना एक बार कि अनपढ़ हैं। पूछे जा रहे हैं कितने पढ़े हो, कितने पढ़े हो।
वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया, स्कूली शिक्षा के बाद में निकल गया।
और तुम रट लगाए बैठे हो कि कितने पढ़े हो, कितने पढ़े हो। अरे जिस आदमी ने घर परिवार, हाँ हाँ परिवार, देश के लिए छोड़ दिया हो, क्या वो स्कूल में वक्त खराब करेगा क्या? नहीं नहीं तुम ही बताओ, करेगा क्या? नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में एक और नई जानकारी सामने आई है। उन्हें देश से ही नहीं बल्कि खुद से भी संवाद करने की आदत है। कभी कभी अकेले में होते हैं तो खूब बातें करते हैं खुद से और बहुत समझाते हैं खुद को।
मोदी जी, चुनाव में भाषण करना अलग चीज है। तुम कहते हो गरीबी हटाओगे,
मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे।
तो दोस्तों 2017 के सभी शिकवे शिकायतों को यहीं छोड़ते हैं और मैं राजेश जोशी आपसे इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि नए साल में यानी 2018 में आप उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे और नए साल का स्वागत करते हुए मनराज हसन की तरह गा उठेंगे।
हैप्पी न्यू ईयर सोने ओ, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर। दुख सुख ताए आउंदे जांदे फेरते ल्याओ जीयर, दुख सुख ताए आउंदे जांदे फेरते ल्याओ जीयर।
वर्षांत श्रृंखला की आखिरी पेशकश आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी राजेश जोशी से, जिसमें तकनीकी सहयोग रहा शाकिर आलम का। ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। इससे पहले कि विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने आज अपने प्रशंसकों के सामने राजनीति में आने की घोषणा की। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के एक कैंप पर हुए फिदायीन हमले में 4 जवानों की मौत हो गई। ईरानी प्रशासन ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। पूर्वी अफगानिस्तान में अंतिम संस्कार के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जिसके बाद कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि विश्व में संघर्ष गहराते जा रहे हैं और पिछले 12 महीनों में नए खतरे पैदा हुए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया नवीन नेगी ने। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।